Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Tat Sat. Tav Tattvam Najanami Kidrishosi Maheshwara Yadrishosi Mahadeva Tadrishaya Namo Nam. उपनिषद के शांति पाठ में साधक को सावधान किया गया है कि ब्रह्म विद्या की ओर अग्रसर होने के लिए अंतःकरण की पवित्रता, ज्ञान इंद्रियों की पवित्रता और परम तत्व की ओर उन्मुखता, जब मानसिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से साधक तैयार हो जाता है तो फिर उन्होंने इस विद्या की परंपरा का उल्लेख किया कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने इसका उपदेश अपने बड़े पुत्र अथर्वा को, अथर्वा ने अंगी को, अंगी ने सत्यवाहन को, सत्यवाहन ने अंगिरस को इसका उपदेश किया। अंगिरस से शौनक प्रश्न कर रहे उपनिषद कि तृतीय श्रुति तीसरा मंत्र, शौन को हाव वै महाशालो अंगिरसम विधिवत उपसन्नः पप्रच्छ। शौनक का विशेषण दिया गया महाशाल। महाशाल का अर्थ है सद्गृहस्थ, जो गृहस्थ आश्रम के नियमों को पूर्ण रूपे निभा रहा है, गृहस्थ में रहते हुए आश्रम के अनुसार, वर्ण के अनुसार जिन भी नियमों का निर्धारण शास्त्र में किया गया है उनको वो पूरी तरह से पूरा कर रहे, ऐसे शौनक हैं। शौनक ऋषि हैं और कर्म कांड के निष्णात विद्वान भी हैं और पूर्ण निष्ठावान भी। महाशाल का अर्थ ये है कि उन्हें शास्त्रों का ठीक से ज्ञान है, तभी तो वो गृहस्थ में रहते हुए शास्त्रानुसार सभी नियमों का पालन कर रहे। पुराणों में शौनक जी की कथा जहां भी आएगी वो हवन करते हुए, यज्ञ करते हुए, दीर्घ काल तक चलने वाले सत्र के, हवनों के आयोजक, और बीच बीच में जो समय मिलता है उसमें वो पुराण की कथाएं सुनते हैं, ऐसा इनका वर्णन। इसका अर्थ ये है कि गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थ के नियमों का ईमानदारी से पालन करते हुए, शास्त्रों का ज्ञान भी है उनको पूरी तरह से, लेकिन वो जो ज्ञान है अनुभव में नहीं उतरा। अन्यथा इतने विद्वान, वेदों के ज्ञाता, ऋग्वेद के कई मंत्रों के दृष्टा हैं शौनक, स्वयं मंत्रों के ज्ञाता होकर फिर किसी से पूछने जाए तो इसका अर्थ इतना ही होता है कि उन्होंने वेदों का अध्ययन बौद्धिक स्तर पर अच्छी तरह से कर लिया है। उनको शब्दों के अर्थ आते हैं, जो भी मंत्र हैं उनके अर्थों से वो पूर्ण रूपेण परिचित हैं, वो जानते हैं किस शब्द का क्या अर्थ है, लेकिन उनके वो अनुभव में नहीं आया, वो जीवन में चरितार्थ नहीं हुआ, इसलिए वो अंगिरस ऋषि के पास जाते हैं और विधिवत उपसन्नः। विधिवत उपसन्नः का अर्थ केवल इतना ही है कि जो भी बाह्य दृष्टि से औपचारिकताएं चाहिए गुरु के पास पहुंचने की, उन औपचारिकताओं का वो विधिवत पालन कर रहे हैं। इस छोटे से एक शब्द में गुरु शिष्य के संबंधों का, जिज्ञासु किस भावना से किस विधि से गुरु के पास पहुंचे, उसका जिज्ञासु की स्वयं में योग्यता क्या हो, इन सब बातों का उल्लेख कर दिया गया है। अर्थात स्वयं अच्छी तरह से परिचित हो शास्त्रों से, और जहां कहीं भी जिस भी आश्रम में रह रहा है उसका विधिवत पालन कर रहा, और फिर उसे पता हो कि क्या मुझे आता है और क्या नहीं आता। अर्थात जो अपने अज्ञान से परिचित है, ज्ञान से नहीं, ज्ञान तो उनको बहुत है, जो ज्ञान से परिचित होगा कि मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मुझे ऋग्वेद का पता है, अथर्ववेद का पता है, मुझे अमुक भी आता है, वो भी आता है, तो वो कभी ब्रह्म विद्या का पात्र नहीं होगा। जो अपने अज्ञान से परिचित है और अज्ञान की जिसको वेदना है, पीड़ा है, हृदय के अंदर जिसके ये दर्द है कि इतना कुछ जानने पर भी मुझे वो नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए था, जब तक ये तड़प नहीं होगी तब तक ब्रह्म विद्या की प्राप्ति संभव नहीं है। जो इतना पढ़ने पर भी, इतना करने पर भी, जैसे भौतिक दृष्टि से जो लोग मेहनत करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, दिन रात काम करते हैं, फिर वो तड़पते हैं, कहते हैं जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना वो हो रहा है, उतना मिल नहीं रहा, वो उनकी ये तड़प उनको और मेहनत करने के लिए प्रेरणा देती है और नई नई बातें सीखने की भी प्रेरणा देती है, और अंततः वो जीवन में सफलता प्राप्त करती। सफलता हमेशा उसी को मिलेगी जो अपने अज्ञान से परिचित हो और उस अज्ञान की उसमें वेदना, उसमें तड़प हो, ये दर्द हो कि ये मेरे में ये कमी है, ये कैसे पूरी हो। जिसमें ये कमी का एहसास नहीं, वो व्यक्ति ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं, ये बात यहां पर उन्होंने बतलाई। इस तरह से शौनक अंगिरस के पास पहुंचते हैं, एक वेदना लेकर, जिज्ञासा लेकर, और स्वयं में पूर्ण रूपेण वो शास्त्रों के ज्ञाता है, और जाकर वो प्रश्न कर रहे हैं, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदं विज्ञातं भवति। वो कहते हैं कि हमने बहुत जगह ये पढ़ा कि उस एक को जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। सब कुछ जाना हुआ हो जाता का अर्थ यह है कि फिर कुछ जानने की जरूरत नहीं रहती। कुछ एक ऐसा है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद फिर कुछ और प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। कोई एक ऐसा तत्व है जिसको जान लेने के बाद फिर कुछ भी और जानना बाकी नहीं रहता। जब ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जानना बाकी नहीं रहता, उसका सकारात्मक अर्थ होता है कि व्यक्ति जीवन में पूर्णता का एहसास करता है, कुछ ऐसा है जिसको जानकर फिर अपने में अपूर्णता नहीं रहती, कुछ ऐसा है जिसको प्राप्त करके सब कुछ ही प्राप्त हो जाता है, कोई चीज अप्राप्त नहीं रहती। ऐसा शास्त्रों में पढ़ा और उस पर विचार किया कि कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा तत्व है जिसको जान लेने के बाद फिर और कुछ जानने की जरूरत नहीं। लेकिन जब वो तत्व समझ में नहीं आया, शास्त्र झूठे हो नहीं सकते, ये भी मन में दृढ़ विश्वास है कि शास्त्र ने जो कहा वो सत्य है, और अपनी समझ में आ नहीं रहा कि वो कौन सा तत्व है जिसको जानकर फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता, ये लगन, ये वेदना जिज्ञासु को गुरु तक पहुंचा देती है, अर्थात शौनक को अंगीरस तक पहुंचा देती है। अंगीरस के पास जाकर विधिवत उनकी शरण में उनके पास बैठकर फिर उन्होंने वही प्रश्न किया कि जो हमने पढ़ा हुआ है आप जरा उसके संबंध में बतलाइए कि कस्मन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातुं भवति, कि वो क्या है जिसको जानकर सारा कुछ जाना हुआ हो जाता है और फिर कुछ जानने की इच्छा नहीं रहती। उनका ये प्रश्न सुनकर अब अंगिरथ उत्तर देते हैं, तस्मै साहोवाच, उसके लिए अर्थात उस शौनक के लिए अंगिरस जी ऐसा बोले, द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यत् ब्रह्म विदो वदन्ति परा चैव अपरा च। अंगिरस कह रहे हैं कि दो विद्याएं हैं जिनको जानना चाहिए, और वेद के जानने वाले जिनके संबंध में अधिक चर्चा करते, वो दो विद्याएं कौन सी हैं, परा चैव अपरा। उनमें से एक विद्या को अपरा विद्या कहते हैं, एक विद्या को परा विद्या कहते हैं। अपर और पर ये दो विद्याएं हैं, ऐसा सब ज्ञान के ज्ञाता वेदों के जानकर कहते हैं कि दो विद्याएं हैं। उनमें तत्र अपराह ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरण नरोक्तो छंद ज्योतिषम इति अत्परा यथा तदक्षरम अधिगम्यते। उन्होंने कहा दो विद्याएं हैं, परा और अपरा। उनमें जो अपरा विद्या है वो तो है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष, अर्थात वेद उपवेद वेदांग, ये अपरा विद्या। इसका नाम अपरा रखा गया कि ये अपरा विद्या में क्या है, चार वेद हैं और चार वेदों के चार ही उपवेद हैं। वेद तो हैं ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद, उपवेद हैं आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्व वेद और शिल्प वेद, और वेदांग हैं वेदों के अंग हैं शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष, ये छह वेदांग कहलाते। इस तरह से ये 14 मिलकर अपरा विद्या, इन सब में बहुत सारी बातें हैं, अर्थात संसार की कोई ऐसी बात बची हुई नहीं है जो इन वेदों उपवेदों और वेदांगों में ना आ जाए, सभी कुछ इसमें आ जाता है। अर्थात इसमें ज्योतिष भी है, तारक विद्या भी है। इसमें आजकल की भाषा में आप कहो तो जिसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मनोविज्ञान, वो सब के सब इसमें आएंगे। संगीत भी है, स्थापत्य कला भी है, वास्तु कला भी है, ये सब इसी में ही आ जाती हैं। ये जो ऊपर उन्होंने नाम गिनवाए, वो कह रहे हैं कि इनमें है। और पराविद्या ये है अपरा, और पराविद्या क्या है? तत् अक्षरम अधिगम्यते। परा वो है जिससे अक्षर का ध्यान होता है, अधिगम्यते पहुंचते हैं हम अक्षर तक। अपरा विद्या के लिए तो 14 बातें गिनवा दी, वेद भी, उपवेद भी, वेदांग। अब अगर हम एक एक वेद को लेके कि इसकी कितनी ऋचाएं हैं, इसमें कितने मंडल हैं, कितने इसमें श्रुतियां हैं, किस किस बात का वर्णन है, किस वेद में कितने देवताओं का उल्लेख है, इन बातों को लेकर करने लगे तो उम्र गुजर जाएगी हमारी, लेकिन उनका पार नहीं पा पाए। इतना ज्ञान है इन सब वेदों में कि उनका हम सारी उम्र का अध्ययन भी हो तब भी कुछ ना कुछ बाकी बच जाएगा। उसके लिए तो इतनी बातें गनवा दी उन्होंने। और दूसरी जिसको पराविद्या कहा, उसके लिए सिर्फ एक शब्द आया कि पराविद्या वो है जिससे अक्षर का ज्ञान होगा। अक्षर कहते हैं जिसका क्षय कभी नहीं, जिसका नाश कभी नहीं। और ये बात स्वयं ही आप समझ लें कि जिसका कभी नाश नहीं होता वो कभी पैदा भी नहीं होता, क्योंकि सिद्धांत ये है कि जो पैदा होगा उसका नाश जरूर होगा, जिसका आदि होगा उसका अंत अवश्य होगा, जिसका अंत नहीं, जो अनंत है उसका आदि भी नहीं, उसकी शुरुआत भी नहीं कि कहां शुरू हुआ। अगर कुछ शुरू हुआ है तो उसका अंत जरूर है, अगर कोई पैदा हुआ है तो उसका नाश जरूर है। तो पराविद्या कौन सी है, उसके लिए उन्होंने अक्षर शब्द कहके छोड़ दिया कि पराविद्या वो है जिसमें अक्षरम अधिगम्यते, अक्षर का ज्ञान होता है, अर्थात उस तत्व का ज्ञान होता है जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, जिसका कभी नाश नहीं है, जिसका कहीं अंत नहीं। जिसका अंत कहीं ना हो वो सब जगह होता है। जब हम कहते हैं उसका कोई अंत नहीं तो इसका अर्थ यह है कि वो हर जगह पर है, कोई जगह ऐसी है ही नहीं जहां पर वो ना हो, कोई वस्तु ऐसी नहीं जिसमें वो ना हो, कोई स्थान ऐसा नहीं जिसमें ना वो हो, और कोई समय ऐसा नहीं जिसमें वो ना हो। देश, काल, वस्तु, परिच्छेद रहित जो भी होगा उसको अक्षर कहते हैं। अक्षर वो होता है जो जिसकी सीमाएं ना हो, जिसकी सीमाएं होंगी वो क्षय होगा ही। और सीमा निर्धारित करते हैं देश, काल और वस्तु। देश का मतलब है जिसकी लंबाई चौड़ाई हो। देश कहते हैं किसी ऐसी चीज को जिसको हम कह सके कि इतने किलोमीटर लंबा, इतने किलोमीटर चौड़ा, उस घेरे में वो है, तो उसको देश परिच्छिन्न कहते हैं कि इतना लंबा इतना चौड़ा उसके अंदर जो है वही है। तो ये देश द्वारा लंबाई चौड़ाई दिशाओं द्वारा परिच्छिन्न कर लिया गया, लिमिटेड कर दिया गया। और काल परिच्छेद उसको कहते हैं जो समय के बीच में हो कि इतने वर्षों तक इस डेट से शुरू हुआ और इस डेट तक रहेगा, उसको काल परिच्छिन्न कहते हैं। तो जो काल परिच्छिन्न हो, देश परिच्छिन्न हो, ये पारिभाषिक शब्द हैं सारे, अर्थात देश, काल और वस्तु, ये हमें छोटा कर देती है, टुकड़ों में ये बांटते हैं। और जो बीच वस्तु टुकड़ों में बटी हुई होगी वो कभी अक्षर नहीं हो, उसका क्षय जरूर होगा, कभी भी हो, देर से हो, ये बात दूसरी है कि वो काफी समय रहे लेकिन अंत में उसका नाश जरूर है, चाहे वो अवतार रूप में स्वयं भगवान ही आए इस धरती पर, लेकिन अगर आए हैं किसी काल विशेष में, रहे हैं किसी स्थान विशेष पर, तो वो जाएंगे भी जरूर यहां से। वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि देश से, काल से, वस्तु से परिच्छिन्न है, वो बांध दिए गए हैं कि अमुक जगह पर पैदा हुए, अमुक काल में पैदा हुए, अमुक क्षेत्र उनका लीला क्षेत्र रहा। ऐसा जो भी होगा वो अक्षर नहीं हो सकता, उसका क्षय होना ही है। इसलिए पराविद्या क्या है? पराविद्या के लिए कोई और शब्द नहीं दिया गया, इतना ही कह दिया कि पराविद्या वह है जिससे अक्षर का ज्ञान होता है। अक्षर का ज्ञान, इसी में उनके उत्तर भी छुपा हुआ है। जो उन्होंने प्रश्न किया था ना कि वो क्या है जिसको जान लेने के बाद फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता, जब वो कहते हैं कि परा से अक्षर का ज्ञान होता है, तो इसका अर्थ इतना ही है कि वो अक्षर ही एक ऐसा है जिसको जान लेने के बाद फिर जानना कुछ बाकी नहीं बचता। जो क्षयवान है, जो नाशवान चीजें हैं, उनको तो कितना भी जानते जाओ, आज जानेंगे फिर कल को, फिर वे वो नाश हो गई, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे उसको हम गिनते रहे। लेकिन जिसका कभी नाश नहीं है, उसको जान लिया तो फिर और कुछ जानने के लिए बाकी नहीं बचता, ये उनका कहने का अभिप्राय है। यहां पर उन्होंने क्षर और अक्षर अर्थात इन दोनों बातों का थोड़ा विश्लेषण किया कि भाई बाकी जो उन्होंने बतलाया कि वेद, उपवेद, वेदांग, इनसे जो कुछ भी जानोगे वो क्षर है, नाशवान है। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान दूसरे अध्याय में अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये जो वेद हैं, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण भव अर्जुन, ये जो वेद हैं इनमें तो तीन गुणों का वर्णन है, या जो लोग तीन गुणों से ग्रस्त हैं, सत्, रज, तम, उनके लिए ये वेद हैं और तू गुणातीत हो जा, तो उसको ढूंढ जो इन गुणों से रहस्य के घेरे में नहीं है। तो यहां पर उन्होंने, यहां एक बात और भी, इस पर बहुत गंभीर चर्चा हुई, कई प्रश्नोत्तर हुए विद्वानों में कि इसका अर्थ तो ये हुआ कि वेद बेकार हैं, जब वो कहते हैं कि ये जो है वेद हैं इनमें तो कुछ नहीं है, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि कोई ऐसी भी चीज है दुनिया में जो वेदों से अलग मिल सकती हो किसी को? अगर कोई ऐसा तत्व हो कि जो वेदों से अलग किसी को मिल सकता हो, तो फिर वेदों की सार्थकता ही क्या रहे, फिर इनका महत्व ही क्या रहा? इस बात को लेकर आध्यात्मिक क्षेत्र में, बौद्धिक क्षेत्र में, यूनिवर्सिटियों में खूब रिसर्च हुई, बड़े बड़े इस पर अपने अपने लोगों ने विचार अभिव्यक्त किए हुए। यहां पर केवल कहने का अभिप्राय इतना ही है कि इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो किसी काम के नहीं, लेकिन उनमें जो छुपा हुआ तत्व है, उनमें होते हुए भी वो तत्व उनसे अलग है। जैसे सब जगह होने पर भी वो इस शरीर में ही है, आत्मा भी कहीं बाहर नहीं है, लेकिन फिर भी इस शरीर में होता हुआ भी वो शरीर में नहीं, इसके बाहर भी है, अंदर भी है, वो भी है, तो ये शरीर आत्मा में कल्पित मात्र है, ऐसा अंतम अनुभव होगा। इसलिए जितने भी वेद हैं, जितने भी वो हैं, ये परा विद्या में ही अपरा कल्पित है, अर्थात उसका बाद करने के बाद, जैसे ऐसा नहीं है कि शरीर का महत्व नहीं, शरीर का तो महत्व है ही, लेकिन फिर भी पंच कोश विवेक के माध्यम से कि क्या अन्नमय कोश मैं हूं, क्या वो उनका निषेध करते? नहीं, अन्नमय भी नहीं, प्राणमय भी नहीं, मनोमय भी नहीं, विज्ञानमय भी नहीं, आनंदमय भी नहीं, इनसे परे जो इन सब का प्रकाशक है वो मेरा स्वरूप। तो ऐसे जैसे उनका निषेध करते हुए हम अंत में सत्य तक पहुंचते हैं, ऐसे ही ये भी बात यहां पर है। यहां पर जब हम अन्नमय आदि कोशों का विवेक करते हैं, तो उसका अर्थ शरीर की निस्सारता नहीं है।